एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
तड़पाया गया, सताया गया, मेरा यीशु मसीह सब सहता गया। तड़पाया गया, सताया गया, मेरा यीशु मसीह सब सहता गया। तड़पाया गया, प्रश्नों पर प्रश्न पूछा गया, निर्दोष था दोष लगाया गया। प्रश्नों पर प्रश्न पूछा गया, निर्दोष था दोष लगाया गया मेरा प्रभु कुछ ना कहा कांटों का ताज पहनाया गया मेरा प्रभु कुछ ना कहा कांटों का ताज पहनाया गया तड़पाया गया सताया गया मेरा यीशु मसीह सब सहता गया तड़पाया गया क्रूस पर वो टंगाया गया पापों से हमारे वो रंगाया गया श्रापी क्रूस पर वो टंगाया गया पापों से हमारे वो रंगाया गया तीसरे फिर जिलाया गया पिता के दही ने बिठाया गया तीसरे दिन फिर जिलाया गया पिता के दही ने बिठाया गया तड़पाया गया सताया गया मेरा यीशु मसीह सब सहता गया तड़पाया गया सताया गया मेरा यीशु मसीह सब सहता गया मेरा यीशु मसीह सब सहता गया मेरा यीशु मसीह सब सहता गया।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके सामने आता हूँ। परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आइए हम उससे प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे जन तेरे सम्मुख आते हैं, हमारे मन हृदयों को तू खोल दे ताकि हम तेरे वचनों को समझ सके और उसके अनुसार चलने सके। पिता, मेरे हर एक श्रोताओं के संग हो, जैसे वे तेरे वचनों को सुनते हैं वे उससे सुनकर बहुतायत से आशीषित हो सके और उन्हें मदद कर तेरे रास्ता में चलने के लिए। मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ दे ताकि मैं तेरा वचन को तेरे सामर्थ के साथ बतला सकूं। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना दया से ग्रहण कर, आमीन। आज का संवाद का शीर्षक है जाकर सब जातियों को सिखाओ। अपने स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान होने से थोड़े समय पहले मसीह ने अपने चेलों से कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और फिर चेलों को आदेश दिया कि तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, मरकुस 16:15। बार बार यही शब्द दोहराए गए थे ताकि चेले लोग उसकी महत्वता को समझ सकें। पृथ्वी के सारे रहने वालों को, चाहे वे बड़े हो या छोटे, धनवान हो या गरीब, सभी पर स्वर्गीय प्रकाश की किरणों को पहुंचाना था। संसार को बचाने के कार्य में चेलों को मुक्तिदाता का सहकर्मी बनकर काम करना था। जब उपरौटी कोठरी में मसीह अपने चेलों से मिला तो 12 को आज्ञा दिया था, परंतु अब एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को आदेश देता है। गलील की पहाड़ी पर सभा के समय जितने भी विश्वासी थे वे सब एक साथ इकट्ठे हुए थे। अपनी मृत्यु से पहले मसीह ने स्वयं इस सभा में समय और स्थान को बता दिया था। कब्र पर स्वर्गदूत ने चेलों को याद दिला दिया था कि मसीह ने गलील में उनसे मिलने का वादा किया है। फसह पर्व के सप्ताह में यरूशलेम में जितने भी विश्वासी वहां पर इकट्ठे हुए थे, उन्हें भी इस वायदे को याद दिला दिया गया था और उनके द्वारा दूसरे बहुत से लोगों को जो अपने प्रभु की मृत्यु पर शोक मना रहे थे यह समाचार पहुंचा दिया गया था। बड़ी ही दिलचस्पी के साथ सभी लोग मिलने की उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे सब लोग उस स्थान पर पहुंचने के लिए घुमावदार रास्ते का इस्तेमाल किए। हर दिशा से वे लोग आए ताकि डा और घृणा करने वाले यहूदियों के संदेह से बच सके। मसीह के विषय में जो समाचार उन्हें मिला था उस पर रास्ते भर आश्चर्य भरे हृदय से वे लोग आपस में बातचीत करते रहे। निश्चित किए हुए समय पर लगभग 500 विश्वासी लोग पहाड़ी के छोटे से स्थान में इकट्ठे हुए थे। मसीह के जी उठने के बाद जिन्हें वह मिला था उनसे सब बातें सुनने के लिए वे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। चेलों ने यीशु से जो कुछ सुना और स्वयं देखा था उसे प्रत्येक समूह के पास जाकर लोगों को बताया और जिस तरह से धर्मशास्त्र से मसीह ने उन्हें समझाया था उसी प्रकार से उन्होंने विश्वासियों को समझाया। थोमा ने अपने संदेह को याद किया और उन्हें बताया कि कैसे उसका संदेह दूर हुआ था। अचानक उनके बीच यीशु आकर खड़ा हो गया। कोई नहीं बता सका कि वह किधर से और कैसे वहां पर पहुंच गया था। जो लोग वहां पर जमा हुए थे उनमें से बहुतों ने मसीह को कभी नहीं देखा था, परंतु उसके हाथों और पांवों में कीलों के निशान देखे। उसका चेहरा ऐसा चमक रहा था जैसा परमेश्वर का चेहरा हो और जब उन्होंने उसे देखा तो उसकी आराधना करने लगे। परंतु कुछ लोग शंका करने लगे और ऐसा तो सदा ही होता रहेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो विश्वास को काम नहीं करने देते और अपने आप को संदेह के घेरे में डाल लेते हैं और ऐसे लोग अपने अविश्वास के कारण बहुत कुछ खो देते हैं। अपने जी उठने के बाद यीशु का अपने बहुत से विश्वासियों के साथ केवल यही मिलना हुआ था। वह आया और उनसे कहने लगा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। उसके बोलने से पहले ही चेलों ने उसकी उपासना किया था, परंतु उसके वे शब्द जो वह बोल रहा था और जो पहले उसकी मृत्यु के साथ समाप्त हो चुके थे उनमें एक शक्तिशाली रोमांच पैदा कर दिए थे। अब वह जी उठा मुक्तिदाता था। उनमें से बहुतों ने उसकी चंगाई करने और दुष्ट आत्माओं पर नियंत्रण करने की शक्ति को पहले भी देख लिया था। बहुतों ने विश्वास कर लिया कि उसके पास सामर्थ है कि यरूशलेम में अपना राज्य स्थापित करे, सभी विरोधियों को परास्त करने और प्रकृति पर नियंत्रण रखने की शक्ति उसमें है। उसने समुद्री तूफान को शांत कर दिया था। वह पानी की उपनति हुई लहरों पर चला था। उसने मुर्दों को जिला दिया था और अब वह घोषित कर रहा है कि सारा अधिकार उसे दिया गया है। उसके सुनने वालों का मन और मस्तिष्क इस पृथ्वी की बातों से ऊपर उठकर स्वर्गीय और अनंत की ओर चले गए थे। उसकी महानता और महिमा को देखकर और सोचकर वे लोग अपने आप को बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंचा हुआ अनुभव करने लगे थे। उस पहाड़ी स्थान पर मसीह द्वारा यह घोषित किया गया था कि मनुष्यों की ओर से उसका बलिदान पूर्ण और अंतिम था। प्रायश्चित की शर्त पूरी कर दी गई थी। जिस कार्य को करने के लिए वह इस पृथ्वी पर आया था उसे उसने पूरा कर दिया था। अब वह परमेश्वर के सिंहासन की राह में था जहां पर स्वर्गदूत प्रधान और अधिकारी उसका सम्मान करेंगे। वह अपनी मध्यस्थता के कार्य को करने के लिए प्रवेश पा लिया था। अपूर्व अधिकारों से सुसज्जित होकर वह चेलों को आदेश देता है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। यह हम मत्ती 28 का 19 और 20 में पाते हैं। पवित्र सच्चाई की धरोहर रखने के लिए यहूदी जाति को चुना गया था, परंतु फरीसी नीतियों ने पूरी इंसानी जाति पर अलगाववाद और हट धर्मिकता को लाद दिया था। याजकों और शास्त्रियों की प्रत्येक वस्तुओं, उनकी पोशाकों, उनकी रीतियों, उनकी विधियों, उनकी परंपराओं ने उन्हें जगत की ज्योति बनने के अयोग्य बना दिया था। उन्होंने केवल अपने आप को और अपनी जाति को ही संसार मान लिया था, परंतु यीशु ने अपने चेलों को आदेश दिया कि वे जाकर बिना किसी देश, जाति, रंग का भेद किए विश्वास और आराधना का प्रचार करें, जिसे सभी देश और जाति और स्तर के लोग ग्रहण कर सकते हैं। चेलों के पास से चले जाने से पहले यीशु ने अपने राज्य की प्रकृति को उन्हें बड़ी सफाई से बता दिया था। उसने याद दिलाया कि उसके राज्य के विषय में पहले ही उसने क्या कहा था। उसने घोषित किया था कि उसका राज्य इस पृथ्वी का नहीं है, बल्कि उसका राज्य आत्मिक का है। उसे दाऊद के सिंहासन पर बैठकर इस पृथ्वी का राज्य नहीं करना था। उसने फिर पवित्र शास्त्र की बातों को याद दिलाया कि जो कुछ उसने अपने जीवन में भोगा है वह सब बहुत पहले स्वर्ग में उसके और पिता के साथ सलाह होने के बाद निश्चित कर लिया गया था। यह सब कुछ पवित्र आत्मा द्वारा उभारे जाकर पवित्र जनों ने भविष्यवाणी कर दिया था। यीशु ने कहा, मुझे मसीह के रूप में रद्द किए जाने की बातों को मैंने पहले से तुम्हें कह दिया था, वह पूरा हुआ। मैंने अपने अपमान, कष्ट और दुख को सहन करने तथा अपनी मृत्यु के विषय में जो कह दिया था वह सब प्रमाणित हो चुका है। तीसरे दिन मैं फिर से जी उठा। धर्मशास्त्र में ध्यान से खोजो और तुम देखोगे कि मुझसे संबंधित जितनी भविष्यवाणियां लिखी गई थी वे सब एक एक करके पूरी हो चुकी हैं। मसीह ने अपने चेलों को आदेश दिया कि जो काम अभी बाकी रह गया है उसे तुम लोग यही यरूशलेम से आरंभ करो। मनुष्य जाति के लिए उसने जो अपने आप को अनोखे रूप से दीन बनाया तथा उसके कार्य का केंद्र यरूशलेम ही रहा। यरूशलेम में उसने दुख उठाया, वहीं पर उसे तिरस्कार कर दिया गया था तथा दंडित किया गया था। यहूदिया उसका जन्म स्थान था। एक साधारण मनुष्य के रूप में लोगों के साथ वहां पर चलता फिरता रहा और जब वह उनके साथ था तो बहुतों ने यह महसूस किया कि स्वर्ग उनके बीच में है। चेले भी अपना कार्य यरूशलेम से ही आरंभ करें। मसीह ने यरूशलेम में जो दुख उठाया था और जितना परिश्रम उसने वहां किया था, जिसे किसी ने कोई महत्व नहीं दिया था, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चेले लोग किसी और शांत व अच्छे जगह के लिए कह सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जिस जमीन में मसीह ने सच्चाई के बीज को बिखेरा था उसे ही चेलों को जोतना और गाड़ना था, ताकि वह बीज अंकुरित होकर खूब फल आए और अच्छी फसल काटी जाए। अपने इस काम में चेलों को यहूदियों के डाह और घृणा के कारण सताहट का सामना करना पड़ेगा, परंतु इन सब बातों से उनके गुरु को पहले ही गुजरना पड़ा था, इसलिए वे इससे नहीं भागेंगे। मुक्तिदाता के हथियारों को ही सबसे पहले दया का भेंट दिया जाएगा। यरूशलेम में बहुत से ऐसे लोग थे जो गुप्त रूप से यीशु में विश्वास रखते थे, और बहुत से ऐसे लोग भी थे जिन्हें याजकों और अधिकारियों ने धोखे में रख छोड़ा था। उन लोगों को भी सुसमाचार सुनाना था, उन्हें पश्चाताप करने के लिए सिखाना था। वह आश्चर्यजनक सत्य जो केवल मसीह के द्वारा पाप की क्षमा प्राप्त हो सकती है उन्हें सरल रूप से समझाना था। यद्यपि पिछले कुछ सप्ताहों से पूरे यरूशलेम में उत्तेजना से भरी अनेक अद्भुत घटनाएं घट रही थी, परंतु सुसमाचार का प्रचार करना उन सब घटनाओं से अधिक प्रभावित करने वाला होगा। परंतु यहीं पर इस काम का अंत नहीं था, इसे तो पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाना था। अपने चेलों से मसीह ने कहा, संसार की ओर से प्रतिनिधि के रूप में तुम लोग मेरे आत्म बलिदानी जीवन के गवाह हो, इसराइलियों के लिए मेरे परिश्रम को देखे हो। यद्यपि वे मेरे पास नहीं आए कि जीवन पाए, यद्यपि याजकों और अधिकारियों ने जो मेरे लिए योजना बनाए थे उसमें सफल भी हुए, यहाँ तक कि उन्होंने धर्मशास्त्र के कहे अनुसार मेरा इनकार कर दिया, फिर भी अभी उनके पास अवसर है कि परमेश्वर के पुत्र को स्वीकार कर ले। तुम लोगों ने देखा है कि जितने भी अपने पापों को अंगीकार करते हुए मेरे पास आए उन सभी का मैंने स्वागत किया था। जो कोई मेरे पास आता है उसे मैं निकाल नहीं देता। जितने भी चाहेंगे वे परमेश्वर के साथ मेल करके अनंत जीवन को प्राप्त कर सकेंगे। और हे मेरे चेलो, जहाँ तक तुम्हारा संबंध है, मैं तुम्हें दया और अनुग्रह का संदेश को सौंपता हूँ। इसे पहले इज़राइल को पहुँचाना है और उसके बाद सभी देशों, जातियों, भाषाओं और लोगों को सुसमाचार देना है। इसे यहूदी और दूसरी अन्य जातियों सभी को देना है और जितने भी विश्वास लाएं सबको लेकर एक कलीसिया में इकट्ठा करना है। पवित्र आत्मा के वरदान से चेलों को अद्भुत सामर्थ मिलने वाली थी। उनकी गवाही की वास्तविकता चिन्हों और अद्भुत कार्यों द्वारा सिद्ध होना था, केवल प्रेरितों द्वारा ही नहीं बल्कि उनके द्वारा जो विश्वासी होंगे उनके द्वारा भी चमत्कार के काम किए जाएंगे। यीशु ने कहा, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। मरकुस 16:17-18। उन दिनों में जहर देकर मार डालना आम बात थी। संदेह से परे रहने वाले लोग अपने मार्ग में बाधा पहुंचाने वालों को इसी विधि से समाप्त कर देते थे। यीशु जानता था कि उसके शिष्यों का जीवन खतरे में होगा। बहुत से लोग ऐसा सोचेंगे कि इन गवाहों को रास्ते से हटा देना भी परमेश्वर का ही सेवा है। इसलिए मसीह ने इस खतरे से बचाने के लिए उनसे वायदा किया था। मसीह उसी सामर्थ को चेलों को देने के लिए कहा था जिस सामर्थ द्वारा वह चंगाई का कार्य कर रहा था। लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। मसीह के नाम से शारीरिक चंगाई देते समय वे उसकी आत्मा को चंगाई देने की सामर्थ को प्रमाणित करेंगे। मत्ती 4:23 और मत्ती 9:6 में हम यह पाते हैं। और अब एक नया उपहार देने का उनसे वायदा किया गया था। प्रेरितों को दूसरे देशों में सुसमाचार का प्रचार करना था, इसलिए वे दूसरी भाषा बोलने के लिए सामर्थ हासिल करेंगे। प्रेरित और उनके दूसरे साथी लोग विशेष पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी पिंतिकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा की बारिश हुई थी तो उनकी अपनी या विदेशी भाषा बिल्कुल शुद्ध, सही और साफ हो गई थी। केवल शब्दों में ही नहीं बल्कि उनका उच्चारण भी सही हो गया था। इस प्रकार से मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दिया। उसने काम में सताहट आने से बचाव का भी प्रबंध कर दिया और उसकी सफलता की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिया। जब तक वे उसके वचनों का पालन करते रहेंगे और उसके साथ संबंध बनाए हुए कार्य करते रहेंगे तब तक वे असफल नहीं हो सकते हैं। उसने उनसे कहा कि सारे देशों में जाओ, विश्व के अंतिम छोर तक जहां भी मनुष्य बसे हैं वहां जाओ, पर यह जान रखो कि मैं वहां पर उपस्थित हूं। विश्वास और भरोसे के साथ परिश्रम करो, ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। मुक्तिदाता ने जो आदेश चेलों को दिया था वही आदेश संपूर्ण विश्वासियों के लिए भी है। यह समय के अंत तक प्रत्येक विश्वासी के लिए है। यह बहुत ही भयानक गलती है कि हम मान लें कि आत्मा के बचाने का काम केवल अभिषिक्त पादरियों का ही है। जितनों को स्वर्गीय प्रेरणा मिली है उन्हें सुसमाचार प्रचार करने का भी काम सौंपा गया है। जितनों ने मसीह के जीवन को ग्रहण कर लिया है वे अपने भाइयों के उद्धार के काम को करने के लिए अभिषिक्त हैं। इसी काम को करने के लिए कलीसिया की स्थापना की गई थी और जितने भी कलीसिया के पवित्र शपथ को अंगीकार करते हैं तो वे मसीह के साथ सहकर्मी होने का शपथ लेते हैं, जैसा कि लिखा गया है प्रकाशित वाक्य 22:17 में, और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे कि आ। जितने कोई सुसमाचार को सुने हैं अपनाए हैं उनका यह दायित्व बनता है कि वे भी जो प्रेम परमेश्वर से पाए हैं, प्रभु यीशु मसीह में उधार पाए हैं और अनुभव कर रहे हैं, उसको दूसरों को बतलाएं, दूसरों को भी बांटे कि सब कोई परमेश्वर का उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। यह मौका यह अवसर हम सबों को दिया गया है। मेरे श्रोताओं, जितने कोई सुन रहे हैं आप सबों को जो परमेश्वर का प्रेम को अनुभव किए हैं, यह अवसर दिया जाता है कि आप भी जाइए और अपने भाई बहनों को, अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को बतलाइए, परमेश्वर का उद्धार का योजना के बारे बतलाइए कि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से, उसके प्रेम से हम उद्धार और मुक्ति पाते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे जब आप यह काम करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरी उपासना करते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे उद्धार का योजना के लिए, तेरा आशीष के लिए, और हम सबों के साथ उपस्थित है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार तू कर, और इस प्रेम को जो हम अनुभव करते हैं हम अनुभव करते हुए दूसरों को भी बतलाने पाए, इसके लिए तू हमें मदद कर और सहायता कर ताकि सब कोई सुन करके तेरा उद्धार का सहभागी हो सके। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833221 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा, AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।